ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि जब हम यहाँ बाबा के सामने योग में बैठते हैं तो उससे में क्या स्मृति होनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे बाप की याद में बैठते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा को तो याद करना ही है, लेकिन शिव बाबा के साथ साथ और क्या करना है, चक्र का भी सिमरन करना है। बाबा ने कहा कि अगर शिव बाबा को याद करते रहेंगे अकेले तो केवल शांति साइलेंस होगी, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो ड्रामा अनुसार तो सबको अपना पार्ट मिलता ही है, लेकिन कई बच्चे ड्रामों पर हो जाते हैं। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा में जो होगा वो मिलेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है, ड्रामा में तो है लेकिन बच्चों को क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ के बिना पानी भी नहीं मिल सकता है, पुरुषार्थ के बिना कोई चीज नहीं मिल सकती है। मानो किसको पानी चाहिए, पानी सामने पड़ा है, उसको उठाएंगे तो सही ना, पिएंगे तो खुद ना। तो इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ भी खुद करना है। बाबा ने फिर कहा बाप आए हैं तुम बच्चों को कांटों से फूल बनाने के लिए, तो फूल बनने के लिए बच्चों को क्या करना है, बहुत प्यार से चलना है और आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। बाबा ने यह भी बताया कि जब सचिव भी दुनिया में होंगे वहां पर हमारे संस्कार कैसे होंगे, और यहां से हम कौन से संस्कार ले जाते हैं और कौन से संस्कार हमारे वहां पर काम नहीं आएंगे, चाहे कितने भी हुनर हैं, कितनी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ कुछ हुनर हैं जो वहां पर काम नहीं आएंगे, वो भी बाबा ने बताया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 15 जुलाई 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग मीठे बच्चे तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। मीठे बच्चे तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़नी है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज का प्रश्न है किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबर 1 खुलता जाता, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबर 1 खुलता जाता है। इसका उत्तर है जो श्रीमत पर चलते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं बच्ची अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। क्या अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ, एक सुनना बाबा की तो दूसरा काम भी है सुनाओ। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ, तो ताला खुलता जाएगा। अभी बाबा ने बता दिया कई कई चीज, हमारी बुद्धि का ताला नहीं खुलता है, तो बाबा ने उसकी तरीका युक्ति पुरुषार्थ का तरीका बता दिया है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी तो चाहिए ना, तुमको तो शांति में रहना है। और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना, डबल काम बाबा ने दे दिया, योग में बैठते हुए क्या क्या करना है, बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए, भल यहाँ कितनों में कोई भी दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे, है ना। लौकिक में कई बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनके अंदर गुण हैं, लेकिन बाबा कहते फिर भी उनको देवता तो नहीं कहेंगे ना, भल यहाँ कितने भी कोई में गुण हो तो भी उनको देवता तो नहीं कहेंगे। देवताएं होते ही हैं स्वर्ग में, दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है, ये भी भारतवासी ही जानते स्वर्ग क्या था नरक क्या था। बाबा ने कहा केवल भारतवासी ही जानते हैं, जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे उनके चित्र भी भारत में हैं। ये है अनादि, ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, फिर भल करके उनके चित्र बाहर में ले जाते, भारतवासी देवताओं की पूजा करते थे, जब बाहर गए तो अपने साथ उनके चित्र भी लेके गए, फिर भल करके उनके चित्र बाहर में भी ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो वहाँ जा करके मंदिर आदि बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो वह अपने चित्रों की पूजा करते, हर एक धर्म वाला कहीं भी जाएगा पूजा करे या न करे, लेकिन उनको ही मानते हैं, उनका ही स्थान बनाते हैं ना। तो बाबा ये बता रहे हैं हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की पूजा करते हैं। जिन जिन गांव पर विजय पाते हैं वहां चर्च आदि जाकर बनाते, ब्रिटिश ने कहाँ का रूल किया और जगह को ऑक्यूपाई किया और वहां जाकर के चर्च बना दिए। जिन जिन गांव पर विजय पाती हैं वहां जाकर चर्च आदि बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के, चाहे पूजा करते हैं चाहे प्रार्थना करते हैं चाहे याद करते हैं, लेकिन उन सबके क्या है अपने अपने जो मुख्य उनको ही चित्र बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे, अपने को अलग समझकर उनकी पूजा करते थे। और धर्म वाले जो पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म संस्थापक कौन है। बाबा कहते और धर्म वाले जो पूजा करते हैं वो जानते हैं कि हमारा धर्म संस्थापक क्राइस्ट हैं। तो बाबा ने कहा तो परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, ये किसने और कब स्थापन किया, ये किसने और कब स्थापन किया। बाप कहते हैं ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है, बाबा बता रहे हैं, बाप कहते हैं ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे। बिगड़ समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे, अभी तुम जानते हो कौन सी बात, हम भक्ति मार्ग में नहीं है तो कहाँ पर है हम अभी। बाबा बताते अब हम भक्ति मार्ग में नहीं तो कहाँ है, तो अभी हम हैं, अभी हम ब्राह्मण कुल भूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। वह भी इस समय तुम समझते हो, पहले तो नहीं समझते थे ना, शूद्र कुल है ये कुल है, बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते, वह भी इस समय तुम समझते हो। सत्युग में नहीं समझेंगे, वहां जरूरत ही नहीं है कुछ समझने की, इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं और पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। आज की दुनिया की क्या हालत है बाबा बता रहे हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। ये है ही क्या है, कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे। कैसा फूल बना रहे हैं बताओ, गुलाब का फूल बन रहे हैं, चमेली का फूल बन रहे हैं, कौन सा फूल बन रहे। बाबा कहते मैं फूल बनाता हूँ कौन सा, खुशबूदार फूल। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, ये है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते, जब कांटे बन जाते हैं तो देवताओं की पूजा करते ना, तो बाबा कहते हैं कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। ये राज भी अभी तुम जानते हो, हम सो देवता थे फिर आकर के अब क्या बने हैं बताओ, कौन बताएगा। हम सो देवता थे फिर अब क्या बने हैं कौन बताएगा, फूल ना। बाबा ने कहा देखो क्या बताया, हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल अथवा ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मणों की विशेषता क्या हुई कि खुशबूदार फूल है। भी बच्चे बाबा के ऐसे ही है, दुनिया की भेंट में तो अंतर है ना। तो बाबा कहते हैं जो फिर आकर खुशबूदार फूल अथवा ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया है ये ड्रामा है, आगे ये ड्रामा बायोस्कोप आदि नहीं, बहुत वर्षों पहले ड्रामा आदि ने, और कुछ 100 साल से ये थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं आगे ये बायोस्कोप ड्रामा आदि नहीं थे, जो वह जो अभी बने हैं। क्यों बने हैं, क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो जाता। बाबा को तो सहज नहीं है लेकिन बच्चों को समझने में सहज होता है, बाबा नहीं समझाएंगे तब तक तो समझेंगे नहीं, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना, बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो वहाँ फिर काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम खत्म नहीं हो जाती है, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीजें हैं वहां की लायक है वह बनती है। अब बताओ सत्यु के अंदर कौन कौन सी आत्मा यहाँ से संस्कार ले जाएंगे। बाबा ने कहा साइंस वाले जाएंगे, विमान बनाने वाले जाएंगे, वो संस्कार ले जाएंगे, फिर दूसरा कौन नहीं जाएगा वो बताओ, डॉक्टर्स बताओ, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जाएंगे? अरे डॉक्टर्स तो जाएंगे, संस्कार होते हुए भी वो मर्ज हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी बाबा के बच्चे यार ढेर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन जो ज्ञान सुनेगा वो जाएंगे ना। फिर बाबा ने एक बात और कही, बाबा ने कहा अच्छा विमान आदि भी बनाते हैं, जो जो काम की चीजें हैं वहां के लायक हैं वह बनती हैं, स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं। अब राज बताया, बाबा ने कहा स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आए। स्टीमर बनाने वाले का संस्कार होंगे लेकिन वहां पर काम नहीं आएंगे, जाएंगे अपनी प्रजा में या जहां कुछ भी है पद पा लेंगे। तो बाबा ने कहा परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे, भल कोई ज्ञान लेवे या ना ले। अब और कला वाले भी हैं, ज्ञान लेवे या ना ले, लेकिन वो जो जाएंगे वहां पर उनके वो संस्कार लेके जाएंगे, लेकिन वो मर्ज हो जाएंगे। जैसे द्वापर युग शुरू होगा फिर धीरे धीरे वो संस्कार शुरू हो जाएंगे, इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आए। अब सुना डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स तो बहुत ज्ञान ले रहे, इतना ज्ञान लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन वो संस्कार जो मर्ज हो जाएंगे। ऐसे और भी कई हैं जो ऐसे डिपार्टमेंट या आर्टिस्ट या प्रोफेशनल है, कुछ कुछ काम नहीं आएंगे संस्कार, लेकिन बाबा के बच्चे वहां तो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे, भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहां तो स्टीमर आदि की दरकार ही नहीं। अब सागर में कौन जाएगा स्टीमर में, प्लेन से जोड़ेगा तो सागर में कौन जाएगा? ड्रामा में है ही नहीं, हाँ विमानों की बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहां के बच्चे सीखकर आते हैं, ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं, पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं ये नहीं समझ। ये जरूर बोलेंगे कि स्वर्गवासी हुआ लेकिन हम नरक में हैं, बाबा कहते ये बिल्कुल नहीं समझते। मनुष्य कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ परंतु हम नरक में हैं ये नहीं समझते। बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है, कितना भी समझाओ हाँ हाँ करके फिर वही के वही रहते हैं। बुद्धि का ताला खुलता नहीं है, तुम बच्चों का अब बुद्धि का ताला धीरे धीरे खुलता जाता है। नंबर वन ताला उनका खुलेगा, अब बाबा ने बताया किसका खुलेगा, जो श्रीमत पर चलने लग पड़े, जो श्रीमत का पालन करेंगे। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना तो जरूर टीचर पढ़ाएंगे, टीचर का काम ही है पढ़ाना, कुछ भी को नहीं पढ़ाओ वो तो पढ़ाएगा ना। तो बाबा के तो जरूर टीचर ही तो पढ़ाएंगे ना। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद मिलेगा। उस पढ़ाई में भी तो योग रहता है ना, उनको याद रहता है मेरा टीचर ये मेरी पढ़ाई है, तो उस पढ़ाई में भी तो योग रहता है ना। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते। अब यहाँ क्या बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? बाबा ने कहा ये नई बात है ना, देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं, हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं कि हम परमात्मा अभी अंतर, हम आत्माएं क्या पक्का करते हैं कि हम आत्माएं भाई भाई हैं और भाई को समझाते। बाबा क्या जानते हैं कि बाबा जो है परमात्मा है, वो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, भाई भाई को नहीं, बच्चों को पढ़ाता हूँ। हम अपने को आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ समझाओ। ये आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परम पिता परमात्मा, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। जब तुम किसी को भी समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, मैं भी आत्मा को ये सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। ये है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो बाबा बच्चों के रिजल्ट भी बता रहे हैं, कभी कभी तो स्थिति में होते हैं, कभी नहीं होते। तो बाबा कहते हैं जब तुम दूसरों को पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो ना। क्यों भूल जाते हैं? मंजिल है ना, बुद्धि में याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तुम आत्मा शुद्ध कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो। बाबा पक्का गया, तुम आत्मा पहले शुद्ध कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं, बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बच्चे कहेंगे हम किसको पढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाबा जब भी मुरली चलाते थे हमेशा बाबा बच्चे बच्चे कहते, ये नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा तो कहेंगे बच्ची बच्चा, लेकिन शिव बाबा कहते थे बच्चे बच्चे। लेकिन तुम जब पढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे? हम आत्माएं भाई भाई को पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बात है कि आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा कहते कितनी महीन बात है, ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, चलते फिरते कर्म करते, बाबा कहते आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तब तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहां तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। बाबा कहते मैं सत्य में आता ही नहीं हूँ, पढ़ाता ही नहीं हूँ, वहां तो मेरी जरूरत ही नहीं, वहां तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और अभी और सभी आत्माओं को अपना शरीर, बाबा कहते देखो क्या है कि बाबा बता रहे हैं यहाँ ही आकर के पढ़ाता हूँ, और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये बाप तो है ही सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर ही नहीं है, इतनी बड़ी अथॉरिटी और उनको अपना शरीर ही नहीं है। उनकी आत्मा का नाम है शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। बाबा की महिमा अलग, देवताओं की महिमा अलग, मनुष्य आत्माओं की महिमा अलग है। तो बाबा कहते हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, वे ज्ञान का सागर और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। ये है बाप की महिमा, श्री बाबा की महिमा। ज्ञान का सागर है, सत्य है, चेत आनंद स्वरूप है। तो बाबा कहते बाबा की महिमा अलग है और देवताओं की महिमा अलग है। बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी का भी मालूम रहता है, हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मिल है। नशा रहता है ना, बच्चे को कितना नशा रहेगा, मेरे बाप के पास इतनी कारखाने, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी फैक्ट्री है, ये सब कुछ तो मेरे को ही मिलना, और तो किसी को मिलना ही नहीं है, तो उसको नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं नशा रहता है ना, बच्चा ही इस प्रॉपर्टी का मालिक बनता, बनेगा कौन मालिक, वही बनेगा ना, और तो कोई बनने वाला नहीं है। ये प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है, बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, वो तो स्वर्ग का मालिक बना देते। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है, वह सुना ना, बाबा के पास कितनी प्रॉपर्टी है वो भी सुन लिया। तुम आत्मा अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, देखो तो सही, जरा जरा बात के अंदर लड़ पड़ते ना। प्रेम में और ही घोटाला पड़ा है। बाबा कहते यहाँ के कलयुगी दुनिया के प्रेम में कितना घोटाला है, झूठा प्रेम है, झूठे प्रेम के पीछे लग जाते हैं, धोखा देते हैं, फिर मारते रहते हैं, तो क्या क्या होता है ना। तो बाबा कहते हैं कितने लड़ते झगड़ते हैं प्रेम में, और ही घोटाला पड़ता है, और ही जितना दुखी हो तो उसमें झूठे प्रेम में होता ही है ना। बाप आकर के विकार बंद कराते हैं तो कितनी मार पड़ती है। बाप कहती हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, सब प्रकार के आते थे, कईयों ने तो बहुत ज्यादा किए होते थे, उनको अंदर खाता रहता था कि हमने ये किया हमने किया। बाबा ने कहा कुछ नहीं सोचो, जो कुछ किया बाबा को बता करके हल्के हो जाओ। कई तो सच बता भी देते थे, बाबा थोड़ी किसी को सुनाएंगे, कोई तो छिपाते रहते थे। तो बाबा कहते थे तो कहते हैं जो विकर्म किया है तो वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते, बाबा कहते मैं क्यों पूछता हूँ, मेरे को क्या पड़ी है, किसने क्या किया किसने नहीं किया। बाबा कहते इसमें भी क्यों बताता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों का कल्याण है, बच्चे बता करके हल्के हो जाएंगे ना। तो बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं ना हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है, ये दुनिया ही पतित है, मनुष्य ही पतित है, दुनिया की हालत भी क्या है, मनुष्यों की हालत भी क्या, ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, पांच तत्व भी पतित, सब कुछ पतित। तत्वों की हालत क्या है, कभी कुछ ना कुछ खेल करते रहते हैं। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र होंगे, इस आसरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया पड़ नहीं सकती। बाबा कई बार बताते हैं कलयुग के अंदर आश्रय पृथ्वी पर देवताएं तो नहीं आ सकते और सत्यों में असुर नहीं आ सकते, तो इस आश्रय पृथ्वी पर देवताओं की परछाया पड़ नहीं सकती। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं परंतु यहाँ थोड़ी आ सकते। दीपावली पे करते हैं, दिवाली का टाइम होता है, लक्ष्मी को बुलाते हैं, सोचे आएगी, लेकिन बाबा कहते वो कैसे आ सकते है, परंतु वह यहाँ थोड़ी आ सकती है। ये पांच तत्व तो बदलने चाहिए ना, सच्चू है नई दुनिया और ये है पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का भी समय है। अब आप बता रहे हैं अभी परिवर्तन होने का टाइम आ चुका है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कलप की आयु ही 5,000 वर्ष की है, तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधेरा है, ज्ञान है ही नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात और ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, भक्ति है अज्ञानियों की रात, भक्तों की रात। जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर कर दिखाया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे, ऐसे नहीं, नई दुनिया को जास्ती टाइम और पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं पूरा आधा आधा होगा, तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। फिर नहीं तो नई को बड़ा टाइम दे दिया, पुरानी को कम, तो क्वार्टर भी नहीं कर सकते, तो नहीं पूरा आधा आधा होगा, तो फिर क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधा ना हो तो फिर क्वार्टर भी कर ना सके। स्वास्तिका में भी चार भाग देते हैं, समझते हैं हम गणेश निकालते, कहीं पर भी भारत के अंदर ये सिस्टम है, कहीं पर भी कुछ कुछ शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिका बनाते हैं, तो समझते हमने गणेश बनाया है। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है, श्री कृष्ण का भी गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं। क्यों महात्मा कहते हैं? क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते। बच्चे को प्यार करना, बड़े को प्यार करना, उसमें कितना अंतर है? बच्चे को तो सब इतना प्यार करते ना, तो बाबा कहते बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू ही नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है, बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, इतने प्योर होते हैं, इतने बोले होते हैं, तो बाबा कहते बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, ये आंखें ही धोखा देने वाली हैं। इसलिए दृष्टांत दिया है कि उसने अपनी आंखें निकाल दी, आती है भक्ति में कहानी, सूरदास ने कैसे अपनी आंख निकाल दी, तो बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसे कोई थोड़ी आंखें निकालते हैं, ऐसे तो कोई निकालेगा ना, ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं है। ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं, तुमको तो अभी ज्ञान का तीसरी आंख मिले, कितने सौभाग्यशाली, कितने भाग्यशाली। बाबा कहते तुम बच्चों को बाबा ने क्या दिया, ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, ज्ञान की तीसरी आंख आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है, बाबा में भी ज्ञान है, वही ज्ञान बाबा बच्चों को देते हैं। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी बात, एक छोटी सी आत्मा छोटी सी बात है कितनी छोटी, उसमें 84 जन्मों का पाठ है। आप ऐसी कोई बात कह न सके, बाहर वाले कितना भी समझाए, भक्ति की कहानी जरूर सुनाएंगे, लेकिन आत्मा छोटी है उसमें 84 जन्मों का पाठ है, ऐसी बात कोई कह न सके, वह तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाप कहती है पहले अपने को आत्मा रियलाइज करो। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता था इधर भी घूमते हैं छोटे छोटे क्या है इधर, अच्छा ये बैठे हैं ना क्लास में बैठे हैं ना, वहां तो ये चाहिए ना हमको, यहाँ क्लास में दो जड़ जानवर बिठा दिए, वहां पर तो चाहिए जानवर, क्या चाहिए, पक्षी चाहिए, मोर चाहिए, और क्या होंगे, बड़े सुंदर सुंदर पक्षी होंगे, मोर होंगे, शेर भी होगा, बकरी होगी, वो मैमे नहीं करेगी, अभी की बकरियां मैमे करती है, होगी वो अपना मधुर संगीत करती रहेगी। तो बाबा कहते जानवर का पीछे सोचो, पहले अपना तो सोचो ना, बाकी ये जहरीले वो चीजें नहीं होंगे, बाकी जानवर होंगे, इतना बड़ी दुनिया है, इतना स्थान है, जंगल है, पहाड़ है, उनका राज्य अपना होगा, वो अपने राज्य में रहते हैं, अब पहाड़ों पर जंगलों में तो रहते हैं, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, जंगलों में जाकर के अपना घर बसाना शुरू कर दिया। फिर कहते ये जानवर आ गया, अरे क्यों नहीं आएगा, उसका घर है तो आएगा ना, कहाँ जाएंगे, आप जंगल में रहते हैं, उसको देख जानवर क्यों आया, अरे क्यों आया वो तो आएगा, उसके घर में हम लोग आके बैठ गए तो वो तो आएगा, घूमेगा फिरेगा, और आप सबसे मिलने के लिए भी आता रहेगा, यहाँ आता है ना एक बहुत प्यार करने आता है, कौन आता है आपके पास, भालू आता है कि नहीं आता है, बहुत प्यार करता है, योगी भी देख करके बहुत प्यार करते हैं, खुश हो जाते हैं, सारे झुंड खड़ा हो जाता है, एक बार एक भालू आ तो जाए, ब्राह्मणों का झुंड वहां खड़ा हो जाता है, वो देखता रहता देख करके चुपचाप चला जाता है। तो जानवर तो होंगे ना, फिर बाबा कहते अरे जानवरों के बारे में तुम क्यों सोचते हो। कोई पूछती है जानवर कहाँ जाएंगे, अरे जानवर की बात तो छोड़ो, पहले अपना कल्याण करो तो जानवर भी ठीक हो जाएंगे। पहले अपने को आत्मा तो रियलाइज करो, मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ बाप। तो बाबा ने दोनों बातें कह दी, वो भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने को आत्मा समझना। क्या बाप कहती है, जबकि अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो फिर मुझे भी कैसे जानेंगे, अपने को ही नहीं समझा है तो बाबा को कैसे जानेंगे, फिर जानवरों को भी कैसे जानेंगे, बाबा तो वही कहना पड़ेगा ना। बाप कहती जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो फिर मुझे क्या जानेंगे। ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है, ये वह बजता ही रहता है, बंद कभी नहीं होता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नींद है फिर हम पुरुषार्थी क्यों करें। बाबा कहते अच्छा ठीक है नहीं करो, बैठे रहो, रोटी कौन देगा, दे जाएगा, रख के चला जाएगा, थोड़ा सा खाओगे थोड़ा सा नहीं खाओगे। तो बाबा कहते हैं कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नींद है फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता है, ऐसे नहीं है ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ड्रामा अनुसार सब कुछ मिल जाए, पानी तो पड़ा है, ऐसे नहीं कि आप ही बूंद बूंद आती रहेगी, बारिश में बाहर बैठ जाओ और भले बूंद बूंद आती रहे तो भी तो कितना मुश्किल है बैठना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आप ही कुछ मिलता रहेगा, कर्म तो जरूर करना ही है। बाबा ने क्या कहा, ऐसे नहीं कि ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा, कर्म तो जरूर करना है, अच्छा व बुरा कर्म होता है ना ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहती है ये रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं है जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। रावण वहां यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते। सतयुग में राम राज्य में वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते। जरूर गीता के श्लोक सुनाते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। कर्म विकर्म कैसे बनते हैं वो तो नहीं बता सकते ना। तो बाबा कहते हैं गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते। वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। संस्कृत में श्लोक आदि सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहती हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है। वो भी श्लोक के अंदर कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ठीक भी हैं। तो बाबा कहती कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं। भगवानों वाच्य परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसको भी पता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बेहद के बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। बेहद के बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसी बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है ऐसी मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। दूसरा ड्रामा कहे पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। ड्रामा कहे पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान समय के महत्व को जान। स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भाव। समय के महत्व को जान। स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भाव। सारे कर्म की कमाई का श्रेष्ठ कर्म का बीज बोने का 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का क्या क्या करना। पहला है सारे कल्प की कमाई। दूसरा है श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का। तीसरा 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का। और चौथा है विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गमाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं तो समय के आधार पर तो स्वयं का पुरुषार्थ। कितनी गहरी बात। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं वह आने वाले समय पर छोड़ देते हैं तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वह एक अविनाशी सहारे के आधार पर पतित कलयुगी दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। स्लोगन, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। और अवेतिशारा जो टॉपिक चल रहा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर शेष सेवा के निमित्त बनाओ। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहो जितना चाहो उतना प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल का श्रेष्ठ खजाना पा सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। तो आज 15 तारीख है, आदरणीय दीदी जी की विशेषता के कई पॉइंट से आज हम सुन रहे हैं। 15 तारीख के सफल करने और कराने में नंबर वन, सफल करने और कराने में नंबर वन, दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं? दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर परख कर उन्हें समर्पित कराती और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती। पहले हमें अपना, दीदी क्या होता था, पहले हमें अपना संकल्प, समय, स्वास्थ्य और संपत्ति सब कुछ सफल करना है, फिर दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा देकर उनका भी भाग्य बनाना। दीदी इन बातों पे बहुत ध्यान रखती थी और करती भी थी, कराती भी थी। और पहले भी कौन से पॉइंट रह गए बाकी? पहले वाली छठा नंबर हो गया, परखने और निर्णय करने। अच्छा, एक पॉइंट और रही हुई है, परखने और निर्णय की शक्ति में नंबर वन। कुछ पॉइंट्स रह गए थे ना दीदी के। दीदी को बुद्धि इतनी स्वच्छ और स्पष्ट थी, जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का टैक्ट ऐसा था जो बड़े बड़े वीआईपीस भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते। बाबा भी कहते, बच्चे किसी की नवस देकर फिर दवा दो। ऐसे दीदी हर एक की नवस को परखती और फिर उसे उसी तरह से पालना देती। हमें भी उनके समान सेवा करके हर आत्मा को बाबा के समीप लाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आपको मालूम हो कि आज बट्टी के भाई बहने आ रहे हैं, आज नया ग्रुप है, अमृतसर से ग्रुप है पंजाब का। और अमृतसर तो बाबा दुनिया की भेंट में भी, दुनिया की नजरों में भी बहुत ऊंच, बाबा के बच्चों में भी, और खास करके अमृतसर में हमारी आदरणीय चंद्रमणि दादी वहां रहती थी, पंजाब जोन के सेंटर्स को संभालती थी। तो अमृतसर के भाई बहने बट्टी के लिए आज आने वाले, कुछ आ भी चुके हैं। जो आए हैं बट्टी के लिए वो हाथ खड़ा करें, थोड़े से आए हैं ना, बाकी दिन तक पहुंच जाएंगे। शाम को 5 बजे सभी बट्टी के भाई बहने पांडव वन के मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे, जहां तिलक विधि से आपका स्वागत होगा। और साथ साथ बता दें कि बट्टी के भाई बहने या और भी कई भाई बहने जो नीचे, अच्छा जो नीचे से हैं वो हाथ खड़ा करें, जो नीचे से एक रात के लिए आए, ठीक है। बात का ध्यान रखना है, जो नीचे से आए हैं बट्टी के भाई बहने, सभी का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, क्योंकि नीचे बैठने के लिए स्थान नहीं है, चारों तरफ कारोबार भी, और दूसरा बारिश भी है। अच्छा, बारिश के टाइम सबके पास छतरी है, छाता लाए कि नहीं भट्टी वाले सब लाए ना, और बारिश में कभी अचानक जोर से आ जाती, बिल्कुल बंद भी हो जाती, फिर बारिश आ जाती, तो लेकिन दौड़ना नहीं है किसको, बरसात के टाइम दौड़ते, बारिश आ गई पता नहीं पड़ता, पांव स्लिप होता है। और किचन साइड में जाते ना, वहां फर्श जो है कभी पानी गिरा, कभी सब्जी गिर गई, कभी कोई चाय गिरा देता है, तो पांव उस समय स्लिपरी होता है। तो जब कदम रखते हैं तो बहुत ध्यान से धीरे धीरे रखना है, ताकि सबको अपना ध्यान रखना है, ठीक है, सब ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।